بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ ریڈیو تہران ہے, اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز. ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں حسن عباس اور ساتھیوں کا سلام پہنچے. شروتا صدا کی بھانتی آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم پویتر قرآن مجید کی تلاوت اور انواد سے کریں گے. آج آپ پویتر قرآن مجید کے سورہ معارج کی 19 سے لے کر 29 آیتوں تک کی تلاوت اور انواد سنیں گے. قاری ہیں شری عبد الباسط.
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے. نسندیہ منش بڑا لوبھی ہے, جب اسے پیڑا اور کشتی ہوتی ہے تو چیخ پکار کرنے لگتا ہے, اور جب اسے دھن سمپتی مل جاتی ہے تو کنجوس بن جاتا ہے, سوائے ان واسطوک نمازیوں کے کہ جو سدیو نماز میں اپنی آیو بتاتے ہیں اور جن کی سمپتی میں ایک اسپشٹ ادھیکار نردھارت ہوتا ہے. مانگنے والے دردروں اور نہ مانگنے والے ونچتوں کے لیے, اور جو لوگ پرلے کے دن کی پشٹی کرنے والے ہیں, اور جو اپنے پالنہار کے دنڈ سے ڈرنے والے ہیں कि उनके पालनहार के दंड से कोई भी बचने वाला नहीं है और जो अपने आप को व्याभिचार से बचाते हैं।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। आज शनिवार है, तीर की 24, जिलिजा की 26 और जुलाई की 15 तारीख। श्रोताओ, हमारा ये कार्यक्रम आप शॉर्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। हमें आशा है कि हमारा आज का प्रसारण भी आपको अवश्य पसंद आएगा। पत्र व्यवहार के लिए हमारे पते नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir, जबकि ताज़ा समाचारों से अवगत होने के लिए हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.ir/hi। श्रोताओं, हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा नोट कर लें। सदा की भांति आप सबसे पहले देश विदेश के समाचार सुनेंगे, उसके पश्चात आप सुनेंगे राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम, जिसके पश्चात आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम ईरानी व्यंजन और सभा का अंतिम और साप्ताहिक कार्यक्रम होगा अच्छी आदतें। श्रोताओ, ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा और अब आप कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से समाचार सुनेंगे। और अब आप रेडियो तेहरान से समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। जनरल सलामी ने कहा है कि हमने पश्चिम की पाबंदियों को रणनीति को हमने नाकाम बना दिया है। डेनमार्क ने कहा है कि हमने बारूदी सुरंग का पता लगाने वाले 6 ड्रोनों को यूक्रेन की मदद के लिए भेजा है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के बाद अबुधाबी पहुंच गए हैं। पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि इस देश में होने वाले आतंकवादी हमलों में अफगान नागरिकों का हाथ है। और अब आप मोहम्मद मेहदी से विस्तार से समाचार सुनिए। इस्लामी गणतंत्र ईरान की पासदारान इनकलाब फोर्स के कमांडर इन चीफ जनरल हुसैन सलामी ने कहा है कि हमने पश्चिम की पाबंदियों की रणनीति को नाकाम बना दिया है और इसके लिए हमने जो रास्ते अपनाए उन्हें पूरी तरह बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ तरीके अब भी गोपनीय हैं। जनरल सलामी ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि दुश्मनों ने हमारे खिलाफ हर हथकंडा अपनाया, उन्होंने देश को तोड़ने की कोशिश की, विभाजित करने की कोशिश की, बदलने की कोशिश की, पाबंदियां लगाई, मगर आज दुनिया के सामने एक विशाल ईरान खड़ा है जिसका गहरा असर है और जो अंतर्राष्ट्रीय ताकत के रूप में पहचाना जाता है। जनरल सलामी ने कहा कि हमारा सामना एक बड़े दुश्मन से रहा और अगर बड़ा दुश्मन सामने न होता तो हम इतने शक्तिशाली न बन पाते। हमारा दुश्मन भौगोलिक दृष्टि से हमसे काफी दूर है, अगर वो इतनी दूर न होता तो इतने दूर के इलाकों तक हम अपनी मजबूती का दायरा भी न बढ़ा पाते। उनका कहना था कि दुश्मन की ताकत की वजह से ही ईरान ने ड्रोन विमान बनाए और अपनी नौसेना की ताकत में लगातार वृद्धि की। जनरल सलामी ने बीते इस समय को याद करते हुए कहा कि एक जमाना था जब लोग कहते थे कि अमेरिकियों के पास ऐसे मिसाइल हैं जो 2,500 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकते हैं, मगर आज हमारे पास ये ताकत आ चुकी है और हम इस स्थिति को हल कर चुके हैं।
انہوں نے کہا کہ دشمن نے پابندیاں لگائی تو ہم نے اپنی کھمتاؤں کو استعمال کرتے ہوئے ضرورت کے اپکرن خود بنائے اور الگ الگ چھیتر میں آتم نربھر ہوئے۔ اسلامی گنتنتر ایران کی آرم فورسز کے جنرل اسٹاف کے پرمکھ جنرل محمد باقری اور پاکستان کے سینا پرمکھ جنرل سید آصف منیر کی ملاقات میں سامرک رشتوں کے وستار پر زور دیا گیا۔ یہ ملاقات شنیوار کو ایران کی آرم فورسز کے جنرل اسٹاف ہیڈ کوارٹر میں ہوئی۔ پاکستان کے سینا پرمکھ ایک اچ استریہ سامرک ششٹمنڈل کے ساتھ ایران کی یاترا پر آئے ہیں۔ رکشا سرکشا ٹریننگ سہت انیک سمبندھت وبھاگوں میں آپسی سہیوگ کو وستار دینے کی یوجنا کے تحت یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ جنرل باقری نے اس ملاقات میں ایران اور پاکستان کے بیچ آپسی سمبندھوں کے اتیت کا حوالہ دیتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ اس سمے الگ الگ چھیتر میں دونوں دیشوں کے بیچ آپسی سہیوگ بہت مہتوپورن ہے۔ اگر دونوں دیشوں کے بیچ رکشا اور سرکشا کے چھیتر میں اسی طرح ٹریننگ کے میدان میں سہیوگ بڑھتا ہے تو اس کا فائدہ دونوں ہی دیشوں نہیں پورے علاقے کو ہوگا۔ پاکستان کی استھاپنا کے بعد سے ایران کے ساتھ پاکستان کے اچھے رشتے رہے ہیں۔ حالیہ ورش میں دونوں دیشوں نے الگ الگ چھیتر میں اپنے سمبندھوں کو گتی پردان کی ہے۔ ایران اور پاکستان کے بیچ 900 کلومیٹر لمبی سنیکت سیما عراق کے بعد پاکستان وہ دیش ہے جس کے ساتھ ایران کی سب سے لمبی سنیکت زمینی سیما ہے۔ یہ سماچار آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں۔ ایران کے ودیش منترالے کے پروکتا ناصر کنانی نے اسرائیل کے بھیتر ہنسک ہو چکی آنترک تناؤ پر بات کرتے ہوئے کہا کہ زانی ڈکٹیٹروں کے چہرے بے نقاب ہو چکے ہیں۔ ودیش منترالے کے پروکتا ناصر کنانی نے کہا کہ فلسطین پر غیر قانونی قبضہ کرنے والے زانیوں نے کئی سال سے اپرادھ کیے اور اس کوشش میں لگے رہے کہ اپنے جعلی شاسن کو پشچم ایشیا میں سب سے ڈیموکریٹک ویوستھا کے روپ میں پرچارت کریں۔ انہوں نے کہا کہ اگر اب زانوی تاناشاہوں کے چہروں سے نقاب ہٹ چکی ہے اور وہ پردرشنکاریوں کو کچلا جا رہا ہے۔ پروکتا نے کہا کہ پردرشنکاریوں کے نیتاؤں نے زانوی پردھان منتری کو چیتاونی دی ہے کہ اسرائیل گہری کھائی کی کگار پر کھڑا ہے۔ الیکھنی ہے کہ اسرائیل میں حالات خراب ہیں۔ نیتن یاہو کی سرکار کے خلاف بڑے پیمانے پر پردرشن ہو رہی ہیں۔ روس کے ودیش منتری سرگئی لاوروف نے کہا ہے کہ امریکہ کے راشٹرپتی جو بائیڈن نے ایران کے پرمانو سمجھوتے میں واپس آنے کے بجائے نئی مانگیں شروع کر دی جس کی وجہ سے سمسیا پیدا ہوئی۔ لاوروف نے کہا کہ پرمانو سمجھوتا اسی وجہ سے بحال نہیں ہو پایا کہ امریکہ نے ایران کے سامنے نئی مانگیں رکھ دی۔ انہوں نے کہا کہ جب جو بائیڈن کی سرکار ستا میں آئی تو امریکیوں نے کہا کہ پرمانو سمجھوتے کو بحال کرنے میں ان کی روچی ہے، لیکن سرکشا پریشد کے پرستاؤ نمبر 2231 اور پرمانو سمجھوتے کو بحال کرنے کے بجائے انہوں نے تہران سے نئی مانگیں منوانے کا راستہ چنا۔ لاوروف نے امریکہ کے بھیتر اتپن ہونے والے حالات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ میں 2024 میں چناؤ ہونے والے ہیں اور اس سے پہلے پرمانو سمجھوتے کے سمبندھ میں ہمیں کوئی آشا جنک چھتج دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ روسی ودیش منتری کا کہنا تھا کہ اس سمے پرمانو سمجھوتے کی بحالی کی آشا رکھنا یتھارتھوادی نہیں ہوگا، کیونکہ ایک سال بعد امریکہ میں چناؤ ہوں گے اور نئی سرکار ستا سنبھالے گی اور کچھ پتہ نہیں کہ وہ سرکار کیسی ہوگی، ڈیموکریٹ آئیں گے یا ریپبلکن۔ اس بات کی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ ایک سرکار دوارا کیے گئے سمجھوتے سے باہر نکلنے کے لیے دوسری سرکار کو نیا ہتھکنڈا نہیں آزمائے گی۔ ڈنمارک کے پرتیرکشا منترالے نے بھارتی سرنگ کا پتہ لگانے والے 6 ڈرونوں کو یوکرین کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ سماچار ایجنسی انا کی رپورٹ کے انوسار یوکرینی سنچار سماچار ایجنسی انا نے یوکرینی سنچار مادھیموں کے حوالے سے بتایا ہے کہ ڈنمارک نے यूक्रेन की मदद के लिए ऐसे 6 ड्रोनों को भेजा है जो बारूदी सुरंग का पता लगाएंगे। समाचार एजेंसी इना की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन के इन ड्रोनों का प्रयोग बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए सूखे और पानी वाले क्षेत्रों में किया जाएगा। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने अपने ट्वीट अकाउंट पर लिखा है कि मैं डेनमार्क में अपने दोस्तों, विशेषकर इस देश के अपने समकक्ष का आभारी हूं। यूक्रेनी संचार माध्यमों के अनुसार डेनमार्क और यूक्रेन ने ऊर्जा के क्षेत्र में एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सोक यूल पूर्व घोषणा के बिना यूक्रेनी अधिकारियों से मुलाकात के लक्ष्य की ओर पहुंच गए हैं। समाचार एजेंसी फार्स प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब रूसी अधिकारियों ने इस देश के दृष्टिकोणों के खिलाफ दक्षिण कोरिया को बारंबार चेतावनी दी है और उस पर यूक्रेन के समर्थन का आरोप लगाया है। दक्षिण कोरिया के सरकारी संचार माध्यमों ने सियोल में राष्ट्रपति कार्यालय के हवाले से राष्ट्रपति और उनकी पत्नी के यूक्रेन यात्रा की सूचना दी है। समाचारों में कहा गया है कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी पोलैंड के रास्ते यूक्रेन पहुंचे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब इमारात यूएई की एक दिवसीय यात्रा पर शनिवार को अबू धाबी पहुंचे। नरेंद्र मोदी के एयरपोर्ट पहुंचने पर संयुक्त अरब इमारात के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। ये नरेंद्र मोदी की 5वीं यूएई यात्रा है। क्षमा कीजिएगा, ये नरेंद्र मोदी की 5वीं यूएई यात्रा है। इस मौके पर पीएम ने कहा कि वो बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए यूएई के शासक मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से बातचीत को लेकर उत्सुक हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई में होने वाले काप 28 के अध्यक्ष नामित डॉक्टर सुल्तान अज जाबिर से सार्थक बैठक की। पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि इस देश में होने वाले आतंकवादी हमलों में अफगान नागरिकों का हाथ है, साथ ही उसने इन हमलों के परिणामों के प्रति चेतावनी दी है। पाकिस्तानी सेना ने एक बयान जारी करके ऐलान किया है कि इस देश में की सशस्त्र सेनाओं को अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान के सुरक्षित ठिकानों पर गंभीर चिंता है और तालिबान की सरकार का आह्वान करती है कि वो दोहा समझौते का पालन करे। ज्ञात रहे कि दोहा समझौते के अंतर्गत तालिबान इस बात के प्रति कटिबद्ध हुआ है कि वो अफगानिस्तान की भूमि के प्रयोग की अनुमति किसी भी पड़ोसी देश के खिलाफ नहीं देगा। और अंत में समाचार की तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अस्सुदानी से टेलीफोनी वार्ता की जिसमें दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय विषयों के बारे में विचारों का आदान प्रदान किया। समाचार एजेंसी इन्ना की रिपोर्ट के अनुसार इस टेलीफोनी वार्ता में दोनों पक्षों ने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के बारे में भी विचारों का आदान प्रदान किया। इस टेलीफोनी वार्ता के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
दोस्तों, मैं हूं रविश जैदी और आपका स्वागत है राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में।
आज के कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे यूक्रेन युद्ध में बदलते समीकरण से भयभीत अमेरिका के बारे में।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन युद्ध को जारी,
और फिर बात करेंगे अमेरिका में हुई सितारों की हड़ताल के बारे में,
अमेरिका की मशहूर फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड,
और अंत में चलेंगे भारत जहां कश्मीर में जल्द चुनाव कराने की मांग को लेकर गुलाम नबी आजाद ने मोदी सरकार और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से गुहार लगाई है।
डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष और भूतपूर्व
तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में। एक ओर अमेरिका और उसके सहयोगी लगातार यूक्रेन को हथियारों पर हथियार दे रहे हैं, वहीं रूस किसी भी स्थिति में पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बीच ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि यूक्रेन युद्ध में रूस की जीत की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए अमरीका भयभीत नजर आ रहा है। इस संबंध में एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे साथी सैयद मीसम।
अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन युद्ध को जारी रखने के लिए कीव को हथियारों की आपूर्ति जारी रखने का आश्वासन दिया है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका में बाइडेन प्रशासन की नीतियों का विरोध बढ़ता जा रहा है। कीव के प्रति वाशिंगटन की वर्तमान नीति पर लगाम लगाने के लिए अमेरिकी कांग्रेस में उपाय किए जा रहे हैं, हालांकि इस तरह के सभी प्रयास अभी तक विफल रहे हैं। गुरुवार को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रीय रक्षा बजट विधेयक में संशोधन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसे अगर मंजूरी मिल जाती तो यूक्रेन को क्लस्टर युद्ध सामग्री भेजने पर रोक लग जाती। इससे पहले भी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय रक्षा विधेयक में कई सेनेटरों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को खारिज कर दिया था, जिसके अनुसार यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य सहायता कम कर दी जाती या पूरी तरह से बंद कर दी जाती। हालांकि इन प्रस्तावों को कांग्रेस के सदस्यों ने बहुमत से रद्द कर दिया है, लेकिन इससे पता चलता है यूक्रेन में युद्ध के प्रति बाइडेन प्रशासन की नीति का विरोध बढ़ता जा रहा है। दरअसल बाइडेन प्रशासन यूक्रेन में खूनी युद्ध को जारी रखने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। यूक्रेन को क्लस्टर हथियार भेजने का जिक्र करते हुए अमेरिकी डेमोक्रेटिक सेनेटर और बाइडेन के समर्थकों में से एक बेन कॉर्डिन कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल आज किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति के इस कदम को लेकर मुझे गंभीर चिंता है। रिपब्लिकन प्रतिनिधियों के बीच यूक्रेन को लेकर बाइडेन प्रशासन की नीतियों का विरोध भी बढ़ रहा है। इसके अलावा लगभग 70 रिपब्लिकन प्रतिनिधियों ने यूक्रेन में क्लस्टर युद्ध सामग्री भेजने का विरोध किया। अमेरिकी रिपब्लिकन प्रतिनिधि मार्जोरी टेलर ग्रीन ने यूक्रेन के प्रति जो बाइडेन के डेमोक्रेटिक प्रशासन की नीतियों की आलोचना करते हुए व्यंग्यात्मक ढंग से कहा कि यूक्रेन नेटो का सदस्य या अमरीका का 51वां राज्य नहीं है। टेलर ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका को यूक्रेन में रूस के खिलाफ प्रॉक्सी वार में नहीं कूदना चाहिए। बाइडेन प्रशासन के आलोचक अमेरिकी सांसद यूक्रेन को हथियार भेजने की आलोचना करते हुए कहते हैं, इस देश को शांति की जरूरत है, युद्ध की नहीं। दरअसल बाइडेन प्रशासन का मानना है कि यूक्रेन युद्ध में रूस की जीत से नाटो की साख खराब हो जाएगी और क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस का दबदबा बढ़ जाएगा। इसके अलावा यूरोप में सामरिक और सुरक्षा समीकरण अमेरिका के खिलाफ और रूस के पक्ष में बदल जाएंगे, इसीलिए वो हर कीमत पर इस युद्ध में रूस को जीत हासिल करने से रोकना चाहता है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
और अब चर्चा करते हैं एक ऐसी हड़ताल के बारे में कि जिसने हॉलीवुड पर ताला लगा दिया है। फिल्मों में अपने अभिनय से दुनिया को न्याय दिलाने की बात करने वाले हॉलीवुड के कलाकारों ने अब अपने शोषण को लेकर मोर्चा खोल दिया है। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूयॉर्क से IRIB के संवाददाता अली रजबी, हमारे साथी अहमद अब्बास की आवाज में।
अमेरिका की मशहूर फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड जहां दौलत पैदा करने की मशीन है, वहीं पश्चिमी कल्चर के प्रचारक और अमेरिका की ताकत की एडवर्टाइजर भी रही है, और ये एडवर्टाइजमेंट उसने सारी दुनिया में खास लक्ष्य से किया है। मगर एक अजीब स्थिति पैदा हुई है कि हॉलीवुड से जुड़े 160,000 लोगों ने हड़ताल कर दी है। मैथ्यू बेलोनी हॉलीवुड के निवेशकों में है, उनका कहना है कि ये हड़ताल हॉलीवुड में एटम बम का बटन दबाने के समान है। हड़तालियों का कहना है कि हॉलीवुड में बड़ी कंपनियां अरबों डॉलर कमाती हैं, लेकिन अभिनेताओं को उचित मात्रा में मेहनताना नहीं अदा करती, इस तरह अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के साथ ज्यादती हो रही है। अभिनेताओं की यूनियन की प्रमुख का कहना है कि हमारा शोषण किया जा रहा है, निवेशक अपने मैनेजरों को मोटी तनख्वाहें तो देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब अभिनेताओं की बारी आती है तो उन्हें पैसा देने के लिए तैयार नहीं होते। हम बहुत लंबे समय से इस तरह का अत्याचार और इस तरह की ज्यादती सह रहे हैं, ये बहुत दुखद है।
It is disgusting.
एक्टरों का कहना है कि हमें वो मिलना चाहिए जो हमारा हक है, दौलत पैदा की जा रही है लेकिन अभिनेताओं को पैसा नहीं मिल रहा है। हॉलीवुड अमेरिका का वेल्थ जनरेटिंग विभाग है और कल्चर की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हॉलीवुड में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले एक्टर बहुत कम पैसा कमा पा रहे हैं। वॉल्ट डिज्नी हॉलीवुड की एक बड़ी कंपनी है। इस कंपनी के CEO का एक बयान सामने आया है जिससे यही लगता है कि बड़ी कंपनियां आसानी से पिघलने वाली नहीं है। उनका कहना था कि अभिनेताओं की अपेक्षाएं यथार्थवादी नहीं है, ये कदम उठाकर वो केवल हमारी चुनौतियां बढ़ा रहे हैं। इससे पहले 63 साल पहले हॉलीवुड के अभिनेताओं ने हड़ताल की थी, लेकिन इस बार 160,000 अभिनेताओं और अभिनेत्रियों का प्रदर्शन तब शुरू हुआ है जब कुछ ही समय पहले 11,000 स्क्रिप्ट राइटरों ने हड़ताल की थी। न्यूयॉर्क से IRIB के लिए अली रजबी की रिपोर्ट।
और अब रुक करते हैं भारत का। भारत प्रशासित कश्मीर में चुनाव में हो रही देरी से अब मोदी के दोस्त भी नाराज दिखाई देने लगे हैं। कांग्रेस को छोड़कर अपनी नई पार्टी बनाने वाले गुलाम नबी आजाद ने भी केंद्र सरकार से जल्द चुनाव कराने की मांग की है। इस बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कहा है कि मोदी सरकार कश्मीर को देश का मॉडल राज बनाने की दिशा में काम कर रही है। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं श्रीनगर से हमारे संवाददाता सिप्ते मोहम्मद हसन।
डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष और भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के भूतपूर्व दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद ने आज एक बार फिर नई दिल्ली से आह्वान किया है कि जम्मू कश्मीर में फौरी तौर पर विधानसभा के चुनाव कराए जाएं। उन्होंने कहा कि 6 वर्षों से जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव नहीं हुए और मेरा ये मानना है कि ये किसी भी तरह से न जम्मू कश्मीर के हित में है और न ही डेमोक्रेटिक सेटअप के हित में है। उन्होंने कहा कि 3 वर्ष हो या 4 वर्ष पहले भी मैंने यही मुतालबा किया और आज भी मैं यही मुतालबा दोहराता हूँ। पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि 6 महीने से ज्यादा किसी भी राज्य या यूटी में सरकार अफसर नहीं चलाते हैं बल्कि वहाँ के प्रतिनिधि जो लोग चुनते हैं वही सरकारें चलाते हैं। उन्होंने कहा कि ये बदकिस्मती का स्थान है कि जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं हो रहा है और पिछले 6 वर्षों से जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव ही नहीं हुए। उन्होंने कहा कि अब जबकि नई दिल्ली की मौजूदा रिजीम ये दावा कर रही है कि सब कुछ ठीक ठाक है, तो मेरी उनसे विनती है कि फौरी तौर पर वो जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कराएं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग भी उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के यूटी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने बार बार ये दावा किया है कि अब स्थिति सामान्य हो गई है, तो मेरी उनसे प्रार्थना है कि फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराए जाएं ताकि यहाँ के लोग अपनी सरकार चुने और अपने समस्याओं का समाधान ढूंढे। उन्होंने कहा कि मेरा भी ये मानना है कि अब स्थिति में काफी बदलाव आया है, लिहाजा लोगों को भी अवसर दिया जाना चाहिए कि वो अपने प्रतिनिधि चुने। उन्होंने इस अवसर पर कहा,
6 साल से हमारा इंतजार है और जम्मू कश्मीर के आवाम का इंतजार है کہ ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ اسٹیٹ میں بحال ہو جائے. ڈیموکریٹک سیٹ اپ کا میرا مطلب ہے کہ چنے ہوئے نمائندے ایم ایل اے بنے اور وہ سرکار چلے, کیونکہ جمہوریت میں یہ کام صرف چنے ہوئے نمائندے ہی کر سکتے ہیں. یہاں یا ہندوستان یا دنیا کے کسی حصے میں 6 مہینے کے علاوہ آفیسر سرکار نہیں چلا سکتے, چنے ہوئے نمائندوں کا ہونا ضروری ہے. تو ہماری 6 سال پہلے بھی مانگ وہی تھی, 5 سال پہلے بھی تھی, 3 سال پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے کہ الیکشن جلدی سے جلدی ہو.
اس بھی جموں کشمیر ایل جی پرشاسن نے کہا ہے کہ جب سے جموں کشمیر کو یو ٹی میں تبدیل کیا گیا ہے, جموں کشمیر میں تعمیر و ترقی ہو رہی ہے. جموں کشمیر یو ٹی کے ایل جی منوج سنہا نے آج ایک سرکاری سبھا کو سمبوجھت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب جموں کشمیر میں جو تعمیر و ترقی کا دور آرمبھ ہوا ہے وہ اپنا لکش پراپت کرتے ہی انت کو پہنچے گا. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو ترقی دینا ہمارا لکش ہے اور ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. انہوں نے کہا کہ بھارت کے پردھان منتری شری نریندر مودی نے جموں کشمیر کے لوگوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ جموں کشمیر کو دیش کی طرح ہر اس استر پر پہنچایا جائے گا جو انیہ راجیوں کو دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر ایک ماڈل اسٹیٹ بننے جا رہی ہے اور ہم نے جو خواب جموں کشمیر کے حوالے سے دیکھا ہے اسے پورا کیا جائے گا. سپت محمد حسن, ریڈیو تہران, سری نگر.
دوستوں, راجنیتک چرچا کا یہ دینک کارکرم اب یہیں سماپت ہوتا ہے. ایرانی ونجن.
دوستو, کارکرم ایرانی ونجن کی ایک انی کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہے مریم مہردادی اور احمد عباس کا سلام سویکار کیجیے. آج بھی ہماری یاترا سنندج کے علاقوں میں جاری رہے گی جو کردستان کا بے حد سندر علاقہ ہے.
श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम आपको इस शहर की सुंदरताओं के बारे में बताएंगे और दो लज्जतदार कुर्दी खानों के बारे में बात करेंगे जिसे कुर्द जाति के लोग पसंद करते हैं जबकि दूसरे भी इसे चाव से खाते हैं. हम कुर्दिस्तान के सुंदर शहर सनंदज की सैर कर रहे हैं. ये कुर्दिस्तान का 1000 टीलों वाला, मस्जिदों वाला और अच्छे बाजारों वाला शहर है. सनंदज کردستان ہی نہیں ایران کے بہت ہرے بھرے شہروں میں سے ایک ہے. اس شہر کی جلوایو سنتلت اور من موہک ہے. اس شہر کی بڑی سندر پرکرتی ہے اور پہاڑ کی خوبصورتی نے بھی اسے 4 چاند لگا دیے ہیں. اس شہر کو بہت سارے ٹیلوں نے چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے. بہار اور گرمیوں کے موسم میں سنندج کا موسم بڑا سہانا ہو جاتا ہے. یہاں پروتیہ جلوایو ہے اور پہاڑ ہونے کی وجہ سے پروتاروہیوں کے لیے یہ بڑا اچھا گنتویہ ہے.
ورتمان سنندج 400 سال سے ادھک پرانے سمے میں بسایا گیا. اس شہر کے آس پاس کیے جانے والے اتکھنن میں کچھ قبرستان ملے ہیں جو کئی 1000 سال پرانے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ 1000 سال پہلے بھی اس علاقے میں آبادی تھی. سنندج شہر کا پرانا پارمپرک ڈھانچہ لمبا سمے بیت جانے کے باوجود اپنے اصلی روپ میں موجود ہے اور اس شہر کی قیمت اور مہتو بڑھاتا ہے. اس شہر کی سب سے اہم عمارتوں میں جامع مسجد یا مسجد دارالاحسان ہے. اس کے علاوہ سنندج کا سنگرہالیہ بھی مشہور عمارتوں میں سے ہے. مشیر دیوان بھی شہر کی بہت سندر عمارت ہے.
पौष्टिक और स्वादिष्ट ईरानी खानों का परिचय. घर बैठे सीखिए लज्जतदार ईरानी खाने पकाने की विधि.
कार्यक्रम श्रृंखला ईरानी व्यंजन में हर शनिवार को कार्यक्रम ईरानी व्यंजन। मलिकुत तुज्जार मेंशन भी सनंदज की ऐतिहासिक इमारतों में गिना जाता है। आबिदार तफरीगाह भी बहुत मशहूर है, जहां सैलानियों का तांता लगा रहता है। इस शहर की अधिकतर ऐतिहासिक इमारतें काजारी और सफवी काल की हैं, जिनकी वास्तुकला बड़ी सुंदर और आकर्षक है। इसमें ईरानी वास्तुशैली की नज़ाकतों को साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है। जैसे खुसरो आबाद इमारत बहुत कीमती निर्माण है, जिसका संबंध काजारी काल से है। कुर्दिस्तान के उस समय के शासक अमानुल्लाह खान अर्दलान वाली ने 6000 वर्ग मीटर के भूखंड पर इस 3 मंजिला इमारत के निर्माण का आदेश दिया था।
आपके लिए ये जानना भी रोचक होगा कि वर्ष 2019 में सनंदज को यूनेस्को ने संगीतकार रचनाकार शहर घोषित किया था। ये चयन इसलिए हुआ कि सनंदज में संगीत बहुत समृद्ध और विविधतापूर्ण है। यहाँ के लोगों के जीवन का ये हिस्सा बन गया है। सोरना और दोहल कुर्दी संगीत के सबसे महत्वपूर्ण साज हैं। दफ और तंबूर को भी कुर्दी संगीत में खास महत्व हासिल है।
इस प्रांत में प्रचलित अनेक प्रकार के साजों में दफ को खास महत्व प्राप्त है। इसीलिए सनंदज शहर को ईरान के दफ बजाने वाले साजंदों की राजधानी भी कहा जाता है। हर साल इस शहर में संगीत का मेला लगता है, जिसमें दफ का बड़ा अहम स्थान होता है। पहले ये मेला स्थानीय रूप से लगता था और सीमित पैमाने पर होता था, मगर अब ये राष्ट्रीय स्तर का मेला बन गया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रूप में भी मशहूर हो चुका है।
आवाज़ दोस्त यानी दोस्त की आवाज़ के नाम से दफ नवाजों का एक बड़ा मेला लगता है, जो इस अंतर्राष्ट्रीय मेले का ही एक हिस्सा होता है। इस सांस्कृतिक इवेंट को देखने के लिए लोग दूर दूर से सनंदज का सफर करते हैं कि उसे करीब से देखें।
हमने बताया कि कुर्दी संस्कृति में संगीत का खास स्थान है। इसी वजह से इस इलाके से बहुत सारे गायक और संगीतकार निकले, जिन्होंने बड़ी ख्याति हासिल की। इनमें सुहराब पुरनाज़री, नासिर रज़ारी, हसन ज़ीरक, मोहम्मद मामूली और शहराम नाज़री का नाम लिया जा सकता है।
दोस्तों, हमने आपको सनंदज की संस्कृति के बारे में बताया, वहाँ की इमारतों और दर्शनीय स्थलों के बारे में भी बताया। हमने सुंदर इलाके में बसने वाले लोगों की बात की। अब हम आपको शहर के बहुत लोकप्रिय खानों के बारे में बताएंगे। यहाँ के खाने बड़े स्वादिष्ट होते हैं और कुर्द इलाकों के अलावा दूसरी जगहों पर भी इन्हें बहुत पसंद किया जाता है। सबसे पहले हम आपको यहाँ की मशहूर आश के बारे में बताएंगे। आश आप जानते ही हैं कि एक तरह का ईरानी व्यंजन है, जो पौष्टिक तत्वों से बहुत समृद्ध होता है। आश वैसे ही बहुत स्वादिष्ट पकवान है। कुर्द इलाकों की मशहूर आश का नाम आशे हालू है।
चूंकि सनंदज का इलाका पहाड़ी है और यहाँ की जलवायु बड़ी संतुलित और मनमोहक है, इसलिए इस इलाके में तरह तरह की सब्जियां और साग भी खूब होते हैं, जिनकी खुशबू दूर दूर तक फैलती है। यही वजह है कि बहुत सारे स्थानीय खानों में अनेक प्रकार के खुशबूदार सब्जियों का इस्तेमाल होता है। हालू आश भी उन खानों में है, जिनमें कई प्रकार की स्थानीय सब्जियां और साग डाला जाता है। कुर्दिस्तान के लोग ज़्यादातर पतझड़ और जाड़े के मौसम में पकाते हैं। इस आश का दूसरा नाम गरे आब गोश्त भी है, क्योंकि इसमें कीमा, कच्चे अंगूर का रस और पानी भी पड़ता है।
حلوا واش بنانے کے لیے 400 گرام چاول، 300 گرام چنا، 250 گرام سفید راجما، 2 میڈیم آکار کی پیاز، 5 میڈیم آکار کے آلو، کچے انگور کا رس پسند کرنے کے انوسار 1.5 کپ خوشبودار سبزیاں اور ساگ جیسے پودینہ، دھنیا، چقندر کی پتی اور پیاز کی پتی، تیل اچھا انوسار، 1 کپ ہلکا گرم پانی، آخر میں نمک مرچ اور ہلدی چاہیے۔ یاش پکانے کے لیے عام طور پر 2 گھنٹے کا سمے چاہیے ہوتا ہے۔
یاش پکانے کے لیے پہلے پیاز چھوٹی چھوٹی کاٹ کر اسے گرم تیل میں ڈال دیجیے اور تھوڑی دیر چلائیے، پھر لال ہو چکی پیاز میں گوشت ڈالیے اور کچھ دیر چلائیے۔ اب اس میں ہلدی، کالی مرچ، نمک کے ساتھ مسالے اور چنے اور راجما ڈال دیجیے۔ جب یہ آدھا پک جائے تو اس میں کٹے ہوئے ساگ ڈال دیجیے۔ اب اس میں ہلکا گرم پانی ڈال دیجیے اور ہلکی آنچ پر آش کو پکنے دیجیے۔ جب گوشت اور چنا اور راجما گل جائے تو اس میں آلو چھوٹے چھوٹے کاٹ کر ڈال دیجیے۔ آدھے گھنٹے بعد آلو گل جائیں گے اور آپ کی آش بھی تیار ہو جائے گی۔ آش کو کتنا گاڑھا رکھنا ہے یہ آپ کی پسند پر نربھر کرتا ہے۔ جب آش پوری طرح پک جائے تو چولہا بند کر دیجیے اور اس میں کچے انگور کا رس ڈال دیجیے اور کھانے کے لیے پروسیے۔
دوستو، کاریکرم کے آخری بھاگ میں ہم آپ کو شیش کباب بنانے کا طریقہ بتائیں گے۔ یہ کردستان کا بڑا لذیذ اور لوکپریہ کھانا ہے۔ کردستان میں کئی پرکار کے کباب پرچلت ہیں۔ کرد تو گوشت کے بڑے ٹکڑے آگ پر بھن کر بھی کھاتے ہیں۔
شیش کباب بنانے کے لیے 1 کلو بھیڑ یا بکری کا گوشت چاہیے، 6 چمچہ دہی، 2 جوا لہسن، 2 پیاز، 50 گرام پودینہ کی پتی، 6 چمچہ زیتون کا تیل، تھوڑا زعفران دم کیا ہوا، نمک اچھا انوسار، آدھا چمچہ کالی مرچ اور ٹومیٹو پیوری۔
کباب بنانے کے لیے پہلے گوشت کو خوب چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیجیے۔ پیاز چھل کر اسے رندا کر لیجیے اور پیاز کا رس نچوڑ لیجیے۔ 2 جوا لہسن بھی چھل کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیجیے۔ پیاز کے رس کو زیتون کے تیل، پودینہ کی پتی، دہی، دم کیے ہوئے زعفران اور مرچ میں ملا لیجیے۔
اب جو مکسچر تیار ہو اسے گوشت میں ڈال دیجیے اور 6 سے 12 گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیجیے۔ کباب کو اگر سوادشت بنانا ہے تو یہی اچھا ہوتا ہے کہ گوشت کے چھوٹے ٹکڑوں یا قیمے میں مسالے اور انیہ پدارتھوں کو پہلے ہی ملا کر میرینیٹ کر لیا جائے۔ جب کباب بنانے ہوں تو گوشت کو سیخ پر لگائیے اور آگ پر بھوننا شروع کر دیجیے۔ یہ کباب آپ کوئلے پر بھی بنا سکتے ہیں اور توے پر بھی بنا سکتے ہیں۔ کچھ ٹماٹر اور ہری مرچ بھی آپ آگ پر بھون سکتے ہیں اور کباب کے ساتھ اسے بھی پیش کر سکتے ہیں۔
دیکھنے میں آتا ہے کہ کرد پریوار گھومنے نکلتے ہیں تو کباب کی تیاری کر لیتے ہیں اور اپنی پسند کی جگہ پر پہنچ جانے کے بعد کباب بناتے ہیں اور ایک ساتھ مل کر کھاتے ہیں۔ اس طرح کے کاریکرم شام کے سمے یا پھر چھٹیوں کے دن آیوجت ہوتے ہیں اور لوگ ان میں بھاگ لے کر بڑا اچھا سمے گزار کر لوٹتے ہیں۔ تو دوستو، کاریکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے، ہمیں انومتی دیجیے۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔ شروتاؤ، ابھی آپ نے سنا ساپتاہک کاریکرم ایرانی ویجن، اور اب پرست ہے ہماری سبھا کا انتم اور ساپتاہک کاریکرم اچھی عادتیں۔
دوستو، کاریکرم اچھی عادتیں کی ایک انیہ کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں مریم مہردادی اور محمد مہدی کا سلام سویکار کیجیے۔
دوستو، کاریکرم کی پچھلی کڑی میں ہم نے دفتروں، کار استھلوں یا ویوسائک استھلوں میں سنچار کوشل کی چرچا کی تھی۔ دفتروں یا ویوسائک استھانوں میں سنچار کوشل ایک مہتوپورن اور سب سے ادھک کام آنے والی چیزوں میں سے ایک ہے۔
हर काम और व्यवसाय में सफलता के लिए तकनीकी महारत का होना जरूरी है। इसी के साथ संचार कौशल और लोगों से जुड़े रहने की कला भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
हर व्यक्ति को अपने दफ्तर या कार्यस्थल में व्यवसायिक संचार के लिए संबंधों में सुधार की जरूरत होती है। परस्पर सम्मान सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है, जो न केवल कार्यस्थल में संचार के लिए बल्कि हमारे सभी संचार के लिए जरूरी है। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे संबोधक इंसान हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम उनका सम्मान करें। इसी तरह से उनका भी कर्तव्य है कि वे हमारा सम्मान करें।
दफ्तर या कार्यस्थल पर विनम्र रहना भी दूसरों से अच्छे संचार के लिए जरूरी है। इसलिए जो लोग विनम्र होते हैं, लोग उनकी बातों को ज्यादा स्वीकार करते हैं। इसी तरह से आत्मसम्मान रखना भी बहुत जरूरी है। संचार कौशल के लिए अगला कदम सहनशीलता है। जब आप दूसरों के साथ सहिष्णु होते हैं तो आप धैर्य रखते हैं और आप तनावपूर्ण स्थिति में शांत रह सकते हैं।
बॉडी लैंग्वेज का संचार में अपना अलग ही महत्व है। संचार का बड़ा हिस्सा बॉडी लैंग्वेज से ही संबंधित होता है और ये क्षमता सबसे महत्वपूर्ण संचार कौशलों में से एक है। वास्तव में जब हम लोगों से बात नहीं कर रहे होते हैं, तब भी हम उनसे संवाद कर रहे होते हैं। ह्यूमर एक अन्य संचार कौशल है जो दूसरों के साथ संचार करने में बहुत सहायक होता है। जिस व्यक्ति को हंसने में आनंद नहीं आता है, वो तनाव में रहता है और तनाव का माहौल उत्पन्न करता है।
इसी तरह से समस्याओं के समाधान में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। समस्याएं हमेशा पेश आती हैं, उनका सामना करने और उन्हें हल करने के तरीके की जानकारी होनी चाहिए। हमेशा सहयोगी बनने की कोशिश कीजिए। अपने सहयोगियों को प्रोत्साहित करते रहिए, उन्हें खुश रखें और उन्हें पीड़ा देते रहें। अक्सर लोग ऊर्जावान और प्रेरित लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं। कार्यस्थल में सफलता के लिए खुले दिमाग का होना भी संचार कौशलों में से एक है।
संचार कौशल वास्तव में व्यक्तिगत भावनाओं को पहचानना और उन पर ध्यान देना है। जो व्यक्ति लोगों की भावनाओं और मानसिकता से अवगत होता है, वो अपने काम में अधिक सफल होता है। काम के नतीजे से लोगों की संतुष्टि और वफादारी निर्धारित होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स से हमारे काम के नतीजे पर अच्छा असर पड़ता है और उद्देश्य प्राप्ति के लिए इससे एक बेहतर परिप्रेक्ष्य तैयार होता है।
इसी तरह से सुनने का कौशल भी एक महत्वपूर्ण कौशल है। कुरान मजीद ने भी ईश्वरीय दूतों के इस कौशल का उल्लेख किया है। लोगों की बातों को ध्यान से सुनकर उनके साथ संचार करना ईश्वरीय दूतों की एक रणनीति रही है। कुरान एक स्थान पर कहता है कि कुछ लोग पैगंबर इस्लाम को परेशान करते हैं, कहता है वो जल्दी विश्वास कर लेते हैं, उनसे कहो वो तुम्हें अच्छी तरह से सुनते हैं, खुदा पर ईमान रखते हैं और मोमिनों की बातों पर विश्वास करते हैं और वो तुम में से उन लोगों के लिए जो ईमान लाए हैं रहमत हैं और जो लोग खुदा के रसूल को यातना देते हैं उनके लिए दर्दनाक दंड होगा।
दोस्तों, लोगों की बातों को सुनना भी एक कौशल माना जाता है। हम में से अक्सर लोगों को लगता है कि हम इस कौशल में दक्ष हैं और हम इसका सही इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है और सभी लोग इसमें निपुण नहीं होते हैं या इस कौशल का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसीलिए कि ध्यानपूर्वक सुनना और सुनकर भी अनसुना कर देना दो अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ ये जानना दिलचस्प होगा कि अक्सर लड़ाई झगड़े सही से नहीं सुनने और सही से नहीं समझने के कारण होते हैं। सुनने का कौशल सफल और प्रभावी सामाजिक संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इससे अपनापन और प्रेम बढ़ता है।
दो लोगों के बीच संचार का मुख्य भाग एक दूसरे की बात गौर से सुनने से संबंधित होता है। सुनने और ध्यान से सुनने में अंतर होता है। सुनना एक शारीरिक और स्वाभाविक प्रक्रिया है। जिस किसी को भी कोई शारीरिक समस्या नहीं होगी, उसके पास सुनने की क्षमता होगी। दरअसल सुनना यानी ध्वनि तरंगों के कारण सुनने वाली तंत्रिकाओं का सक्रिय हो जाना, लेकिन ध्यान से या गौर से सुनना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। इसके अलावा बोलने वाले और सुनने वाले के बीच आपसी समझ के लिए एकाग्रता का कौशल बहुत महत्वपूर्ण है। संक्षेप में सुनने के लिए मुख्य तंत्र कान है, जबकि ध्यान से सुनने के लिए मुख्य तंत्र मस्तिष्क है।
अक्सर लोग सुनने के कौशल से ज्यादा बोलने के कौशल में सुधार का प्रयास करते हैं। इस समस्या का एक मुख्य कारण इस कौशल के महत्व और जीवन में इसके नकारात्मक या सकारात्मक प्रभावी से अनजान होना है। सक्रिय रूप से सुनने का कौशल मतभेदों को कम करता है। उदाहरण के लिए, आम जीवन में सुनने के कौशल को मजबूत करना उन कारकों में से एक है जो असहमति में कमी करते हैं और गलतफहमियों को दूर करते हैं। अगर आप ध्यान दें तो कई बार जब हम दूसरों से चर्चा करते हैं तो हम उनकी बातें सुनने से ज़्यादा अपना जवाब तैयार करने के बारे में अधिक सोचते हैं। इसलिए सुनने के कौशल को मजबूत करने के अलावा गौर से सुनने के रास्ते में आने वाली बाधाओं को जानना जरूरी है, क्योंकि ध्यान से सुनना हमेशा आसान नहीं होता है।
इसी प्रकार कुछ लोग सोचते हैं कि सुनने का कौशल विरासत में मिलता है और वो खुद को बदल नहीं सकते हैं। ये सही है कि कुछ लोग व्यक्तिगत या स्वभाव से दूसरों की तुलना में अधिक मिलनसार होते हैं, लेकिन संचार कौशल में ऐसा नहीं है कि इंसान सुधर नहीं सकता। अभ्यास और अनुभव के साथ इस महारत को हासिल किया जा सकता है। यहाँ ये बिंदु भी महत्वपूर्ण है कि कभी कभी इस कौशल के अभाव का कारण व्यक्तिगत समस्या होती है, जैसे किसी व्यक्ति में एकाग्रता और ध्यान की कमी का होना। अगर आपका ध्यान बहुत जल्द भटक जाता है और आप किसी एक मुद्दे पर ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो आपको किसी मनोवैज्ञानिक की सहायता लेनी चाहिए।
दोस्तों, लहजे में भिन्नता, इशारों और किनारियों में बात करना, अस्पष्ट बात करना गलतफहमी का कारण बन सकता है और दूसरे लोग आपकी बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं। इसी तरह से किसी की बात को ध्यान से नहीं सुनने के कारण भी गलतफहमी पैदा हो सकती है। इसलिए ध्यान से सुनने की महारत को बढ़ाना चाहिए और इसके लिए उचित उपाय करने चाहिए। जैसे कि जब आप किसी से बात कर रहे हों तो गौर से उसकी तरफ देखिए, उसकी बात बीच में नहीं काटिए, सुनते वक्त जवाब देने की कोशिश नहीं कीजिए। अगर सामने वाले व्यक्ति ने कोई मुद्दा बयान किया है या कोई प्रस्ताव रखा है जिसका आपको अनुभव है, तो तुरंत गहरी सोच में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप उसकी बात को ध्यान से नहीं सुन सकेंगे।
दुर्भाग्य से पति और पत्नी के बीच पैदा होने वाली गलतफहमियों में से एक सामान्य और दैनिक बातचीत पर ध्यान नहीं देना है। इससे जीवन साथी अकेलापन महसूस करने लगता है या उसे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे वो किसी दीवार से बात कर रहा हो। धीरे धीरे अपने जीवन साथी के साथ बात करने में उसकी रुचि खत्म हो जाती है। जितनी जल्दी हो सके इस समस्या को हल करने के लिए कुछ सरल तकनीकों के साथ अपने सुनने के कौशल को मजबूत करना चाहिए। दूसरी स्थिति में किसी मनोवैज्ञानिक की मदद ली जा सकती है, ताकि आप या आपका जीवन साथी विभिन्न कौशल सीखकर अपना सामान्य जीवन जारी रख सकता है।
जब कोई दूसरा बात कर रहा हो तो धैर्य रखना चाहिए, ध्यान से सुनिए ताकि आपको उसकी बातें समझ में आ सकें। इस बीच कोई असामान्य हरकत नहीं करनी चाहिए। आराम से रहें और बोलने वाले को असहज महसूस नहीं होने दें। सामने वाले की ज़रूरतों और रुचियों पर विचार करें, उसे घूरकर नहीं देखें, लेकिन आँखों का संपर्क बनाए रखें। इस दौरान मुस्कराते रहना या फिर सिर को सहमति या असहमति के संकेत के रूप में हिलाते रहिए ताकि वक्ता को पता चले कि आप सुन रहे हैं। वक्ता की आवाज़, लहजा और बोलने के तरीके पर ध्यान दे। ये ऐसी चीज़ें हैं जो उसके शब्दों का पूरक हो सकती हैं और संदेश को बेहतर तरीके से आप तक पहुंचा सकती हैं। लिखना और नोट्स तैयार करना आपकी सुनने की एकाग्रता को बढ़ा सकता है और आपको अच्छी तरह से सुनते रहने के लिए तैयार कर सकता है। जब भी आपको एहसास हो कि ये बिंदु या बात महत्वपूर्ण है और उसे लिखने की ज़रूरत है तो उसे लिख लीजिए।
इस महारत को हासिल करने का एक तरीका यह है कि बचपने से ही बच्चों को ध्यान से सुनने की आदत डलवानी चाहिए। इस कौशल में निपुणता हासिल करने के उन्हें उनके दिलचस्प विषयों पर कहानियां सुनाई जा सकती हैं। इसी तरह उनसे विभिन्न आवाज़ों के बारे में सवाल किए जा सकते हैं, उनसे कहानियां सुनी जा सकती हैं और जब वे कहानी सुना रहे हों तो उनकी बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह से आप उनके अंदर सुनने और सुनाने के कौशल को मजबूत बना सकते हैं।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दीजिए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज़। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम अच्छी आदतें और अब समय मुख्य समाचारों के सारांश का। ईरान की पासदारान इनकलाब फोर्स के कमांडर इन चीफ जनरल हुसैन सलामी ने कहा है कि हमने पश्चिम की पाबंदियों की रणनीति को नाकाम बना दिया और इसके लिए जो रास्ते अपनाए उन्हें पूरी तरह बयान नहीं किया जा सकता क्योंकि कुछ तरीके अब भी गोपनीय हैं। डेनमार्क ने कहा है कि हमने बारूदी सुरंग का पता लगाने वाले 6 ड्रोनों को यूक्रेन की मदद के लिए भेजा है। भारतीय प्रधानमंत्री फ्रांस के बाद अबू धाबी पहुंच गए हैं। पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि देश में होने वाले आतंकवादी हमलों में अफगान नागरिकों का हाथ है। तो श्रोताओ, हमें आशा है कि हमारा आज का प्रसारण भी आपको अवश्य पसंद आया होगा। इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा चाहते हैं। खुदा हाफिज़। शुभ रात्रि।